अंशु आज 2 महीने बाद स्कूल गई थी। आरवी इन 2 महीनों में अंशु में ही उलझी रही थी। सुभाष जी को ठीक हुए 2 महीने से ऊपर हो गए थे, पर रूम में सफाई नहीं हुई थी, सब दवाइयां वैसी ही रखी थी। आरवी ने ये काम अपने जिम्मे लिया था और उसको आज वक्त मिला तो वो लग गई काम में। सुभाष जी को सुयश जी अपने साथ पार्टी के दफ्तर लेकर गए थे, क्योंकि वो घर बैठे बैठे बोर हो जाते थे। दोपहर का वक्त था तो अर्पिता जी आराम कर रही थी, छाया को भी आरवी ने आराम करने को कह दिया था और खुद सफाई में लगी हुई थी। सब दवाइयां उसने निकाल कर अलग रख दी कि जरूरतमंद को दे देंगी और सामान साफ करने लगी। सफाई करते हुए उसके हाथ सुभाष जी का वो फोन लगा जिसमें उसने सावित्री जी की फोटो देखी थी। इन दिनों इस बारे में उसने सोचा ही नहीं, पर आज फोन उसके हाथ लगा तो वो आज फिर उन फोटोज को देखने लगी। फोटो देखते हुए अचानक ही एक वीडियो चलने लगी जिसमें फर्श नजर आ रहा था और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। पहली आवाज एक औरत की थी। आरवी ध्यान से सुनने लगी। हम ना आपसे और आपके बेटे से परेशान हो चुके हैं। आप दोनों ही हमें अपनी शरारतों से परेशान कर देते हैं। उन्हें संभालना तो फिर भी आसान होता है, पर आप तो उनसे इतने बड़े होकर भी उनसे छोटे बन जाते हैं और आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। क्यों इतना तंग करते हैं आप हमें? हर चीज सामने होती है, पर आप दोनों बाप बेटों को जब तक हम हाथ में सामान ना दें कुछ दिखता ही नहीं है। उस पर दोनों जानबूझकर हमें परेशान करते हैं और फिर साथ मिलकर खुश भी होते हैं। हम आपको बता रहे हैं सुधर जाइए, वरना कहीं हम आपसे नाराज होकर कहीं चले गए तो एक ही बार में दोनों बाप बेटे की अकल ठिकाने आ जाएगी, तब आप दोनों को हमारी अहमियत पता चलेगी। औरत नाराजगी जाहिर कर रही थी, गुस्सा कर रही थी, पर आवाज बड़ी मीठी सी थी। आरवी को पहचानते वक्त नहीं लगा कि ये सावित्री जी की आवाज है। वीडियो आगे चल रही थी, अब भी फर्श ही दिख रहा था, पर अब अंदर से सुभाष जी की आवाज आने लगी थी। अरे भाग्यवान, क्यों इतनी सी बात पर इतनी खफा होती हैं आप? आपको प्रेम करते हैं तभी तो परेशान करते हैं, और ये हमारा तरीका अपना प्रेम जाहिर करने का। इसी बहाने आप काम छोड़कर कुछ देर हमारे साथ तो होती हैं, और हम काम पर जाने से पहले आपको जी भरकर निहार लेते हैं, जिससे हमारा दिन बन जाता है। क्योंकि आप हमारा भाग्य है, तभी तो आपको भाग्यवान बुलाते हैं। जब से आप हमारी जिंदगी में आई हैं, हमारी जिंदगी बदल गई है, और जब जब हम आपका चेहरा देखकर जाते हैं, हमारे सब काम बन जाते हैं। फिर भी आप इतना परेशान हो जाती हैं, तो अब से हम आपको जरा भी तंग नहीं करेंगे। अपना सब काम खुद कर लिया करेंगे, और शान को भी समझा देंगे कि आपको छोटी छोटी बातों के लिए परेशान ना किया करें। बस आप दोबारा हमें छोड़कर जाने की बात भी अपनी जुबान पर नहीं लाइएगा, वरना हम खफा हो जाएंगे आपसे। सुभाष जी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसमें उनका अथाह प्रेम झलक रहा था। उनकी बातों से दोनों के बीच के गहरे प्रेम का कुछ कुछ अनुमान आरवी भी लगा पा रही थी। सावित्री जी अभी उनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकी थी कि एक तेज आवाज वहां गूंज उठी। माँ, सॉक्स नहीं मिल रहे, जल्दी आइए। इस आवाज के आने के बाद किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई थी, और फिर सुभाष जी ठहाके लगाकर हंस पड़े। आरवी आवाज से ही पहचान गई कि आवाज शान की ही थी। शायद ये वीडियो अनजाने में बनी थी, इसलिए सिर्फ आवाज ही रिकॉर्ड हुई थी, बाकी दिख तो पूरा वक्त जमीन ही रही थी। गलती से बनी होगी वीडियो, पर बाद में सावित्री जी की याद के तौर पर सुभाष जी ने इसे संभाल कर रख लिया, और जरूर जब उनकी बहुत याद आती होगी तो उनकी आवाज सुनकर खुद को शांत करते होंगे। आरवी यही सोच रही थी कि अचानक ही उसके दिमाग में कुछ खटका। ये आवाज, माँ की आवाज मुझे सुनी सुनी क्यों लग रही है? मैं तो उनसे कभी मिली नहीं, और अगर मिली होंगी तो बहुत छोटी रही होंगी, तो याद कैसे रह सकता है? पर फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये आवाज सुनी है? पर कहाँ सुनी है ये याद नहीं आ रहा। आरवी खुद में ही बड़बड़ाते हुए ध्यान से सोचने लगी, पर उसको साफ साफ कुछ याद नहीं आया। उसने 2-3 बार उस आवाज को सुना और ध्यान से सुनते हुए याद करने की कोशिश करने लगी। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो हैरान परेशान से खुद से ही बोली, ये कैसे पॉसिबल है? माँ वहां क्या करेंगी? और अगर माँ इसी शहर में है तो कभी घर क्यों नहीं आई? ये मेरा वहम भी हो सकता है, फिर मैंने उनका चेहरा भी तो नहीं देखा, तो अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना बेवकूफी होगी। लेकिन अगर मुझे सही लग रहा है और वो माँ ही है, तो उनसे मिलकर सालों पहले जो हुआ सब पता लगाया जा सकता है, और शायद तब इस दुश्मनी का अंत हो, और कुछ नहीं तो असली गुनहगार ही सामने आ जाए। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। वैसे भी विहान शायद पुलिस की कैद में होगा। मैं जाकर जल्दी से बस आंटी से मिलकर देखकर आ जाऊंगी कि मेरा अंदाजा ठीक है या नहीं, और अगर मैं सही सोच रही हूँ तो आज सब साफ हो ही जाएगा। अगर ठाकुर साहब गलत निकले तो उनको सजा मिलेगी, और अगर इन सब के पीछे कोई और है तो असली गुनाहगार का चेहरा सामने आ जाएगा और इस दुश्मनी का अंत हो जाएगा। आरवी के मन में उम्मीद की एक किरण जागी थी। अगर वो सही होगी तो सब ठीक हो सकता था, इसीलिए वो जरा भी वक्त गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए बिना देरी किए वो अपने पर्स में फोन रखकर घर से बाहर निकल गई, ड्राइव को चलने को कहा, और कुछ ही देर में कार मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी, और साथ ही रफ्तार में दौड़ने लगा आरवी का दिल, जो मन ही मन अपने विश्वास के पक्के होने की दुआ मांग रहा था। बहुत से सवाल थे मन में, और अब एक एक पल पहाड़ जैसे लग रहा था उसे। खैर, लगभग 1.25 घंटे बाद कार बजाज मेंशन के बाहर रुकी। गेटकीपर में आज फिर आरवी को वहां देखा तो कुछ हैरान हो गया। उसने गेट नहीं खोला तो आरवी ने सर बाहर निकालकर उन्हें देखते हुए कहा, काका मेरा अंदर जाना जरूरी है, गेट खोल दीजिए प्लीज। हम मालिक से पूछते हैं बिटिया, उसके बाद अगर उन्होंने कहा तो जाने देंगे आपको अंदर। आरवी ने सर हिला दिया और बेचैनी से इंतजार करने लगी। गार्ड ने फोन लगाया और कुछ देर बाद फोन उठते पर बोला, साहब वही बिटिया आई है जिनके साथ विराट बाबा हालत किए थे। अंदर हॉल में बैठे मिस्टर बजाज ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उन्होंने चौंकते हुए कहा, कौन आई है? आरवी आई है। बिटिया तुम्हारा नाम क्या है? उन अंकल ने आरवी से सवाल किया, जिस पर उसने छट से कहा, आरवी। अब अंकल ने फोन को कान पर लगाकर कहा, हाँ साहब आरवी बिटिया आई है, कह रही है कोई बात करनी है, आप बोलें तो भेज दें। उन अंकल की बात सुनकर मिस्टर बजाज ने जल्दी से कहा, भेज दो। गार्ड ने फोन काटा और गेट खोल दिया। आरवी की कार अंदर की तरफ बढ़ गई। हॉल में बैठे मिस्टर बजाज के साथ ही मिसेस बजाज भी बैठी थीं, जो अब ठीक हो चुकी थीं। वापसी पर उन्हें विहान की हरकत के बारे में पता चला, पर अपने कपूत से उन्होंने एक बार मिलने तक की कोशिश नहीं की। शायद उनकी नजरों में उसका गुनाह माफी के काबिल नहीं था और उसे सजा मिलनी जरूरी थी, इसीलिए वो बीच में नहीं पड़े। आरवी से मिलना चाहा ताकि माफी मांग सके, पर शर्मिंदगी के कारण ये भी संभव न हो सका। आज आरवी आई तो वो चौंक गए। मिसेस बजाज जो ध्यान से उनकी बात सुन रही थी, उन्होंने फोन करते ही उनसे सवाल किया, किससे बात कर रहे थे आप? आरवी यहाँ आई है क्या? हमने सुना आप उनका नाम ले रहे थे। मिस्टर बजाज जो अब तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतना सब होने के बाद आरवी यहाँ क्यों आई है, और इसी सोच में गुम थे। उन्होंने मिसेस बजाज का सवाल सुना तो निगाहें घुमाकर उन्हें देखते हुए बोले, यादव से बात कर रहे थे, आरवी आई है मिलने।
आरवी यहाँ क्यों आई है? मिसेस बजाज भी कुछ चौंक सी गई ये सुनकर। मिस्टर बजाज ने भी उलझन भरी निगाहों से उन्हें देखते हुए उनके सवाल का जवाब दिया, क्यों आई है ये तो हम भी नहीं जानते, वो आएंगी तब पता चलेगा, पर अच्छा ही है जो वो खुद चली आईं। हम तो उनके घर जाकर माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं कर सके, पर अब वो आई हैं तो अपने कपूत के गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे उनसे। उनकी बात सुनकर मिसेस बजाज ने सर हिला दिया। अब दोनों इंतज़ार करने लगे आरवी का। कुछ सेकंड बाद ही बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आई और चंद मिनटों बाद ही आरवी ने वहाँ कदम रखा। उसने आदर सहित हाथ जोड़कर दोनों को नमस्ते किया, जिस पर दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। आरवी बेचैन निगाहें घुमाकर उन आंटी को ढूंढने लगी। तभी मिस्टर बजाज की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा, बेटा हमें पता चला कि हमारी गैरहाजिरी में विहान ने आपके साथ क्या किया, हम उनकी हरकतों पर बेहद शर्मिंदा हैं। हम तो पहले ही आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे, पर हमारे बेटे ने जो दरिंदगी आपके साथ दिखाई है उसके बाद किस मुँह से आपके पास जाएं यही नहीं समझ आ रहा था हमें। हम जानते हैं कि विहान ने जो गुनाह है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, इसलिए हम आपको उन्हें माफ़ करने को कहेंगे भी नहीं। हम खुद चाहते हैं कि उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा मिले, ताकि दोबारा किसी लड़की की इज्जत पर बुरी नज़र डालने का घोर अपराध वो गलती से भी ना करे। हम ये भी जानते हैं बेटा कि बच्चा जैसा बनता है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके माँ बाप का ही हाथ होता है, क्योंकि बच्चे गीली कच्ची मिट्टी होते हैं जिन्हें आकार देने का काम उसके माता पिता करते हैं। और जैसे घड़े के आकार के लिए जिम्मेदार कुम्हार होता है, वैसे ही अगर बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती उसके माँ बाप की भी होती है। हमारी भी गलती है कि हम उन्हें अच्छी परवरिश नहीं दे सके, सही गलत में फ़र्क नहीं सिखा सके और लड़कियों की इच्छा करना नहीं सिखा सके, इसलिए उनके साथ साथ हम भी आपके कसूरवार हैं, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। मिस्टर एंड मिसेस बजाज ने शर्मिंदगी से अपना सर झुकाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए उसके सामने। आरवी को ये ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उनके हाथों को नीचे करते हुए कहा, अंकल आंटी ऐसे तो मत करिए, बड़े होकर आप मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, पाप लगेगा मुझे। वैसे भी मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है और जिसने गलत किया है उसको तो सज़ा मिलेगी ही, तो आप दोनों अपने मन में कोई गिल्ट मत रखिए। दोनों ने आरवी के सर पर हाथ रखकर उसको ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर आरवी ने नज़रें घुमाते हुए कहा, अंकल मुझे उन आंटी से मिलकर उनका धन्यवाद करना था जिन्होंने उस दिन मुझे बचाने की कोशिश की थी। आरवी की बात सुनकर मिसेस बजाज ने मुस्कुराकर कहा, आप सावित्री बहन की बात कर रही हैं?